श्रीमती दिवांग श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय।
कृपा శ్రీమద్ మధ్వాచార్యకి, శ్రీల ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేటర్ గురుదేవ్ సొల్యూషన్ కి, శ్రీ గోవింద్ దేవ్ కి, దాయి గౌర ప్రేమానందరి
चैतन्य జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయో జయో శ్రీ చైతన్య జయో నిత్యానంద
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయో జయో శ్రీ చైతన్య జయో నిత్యానంద
జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద
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 तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. एक तो है राम विजय महोत्सव विजयादशमी और दूसरा है हमारे जो परंपरा के जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं ब्रह्मा मध्व संप्रदाय के, तो जो श्रीपाद मध्वाचार्य हैं उनका आज आविर्भाव है ना. आविर्भाव आविर्भाव है आज उनका. तो उनके बारे में आज मध्वाचार्य की कुछ ऐसी विशेष जीवनी को हम सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपद मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है उसको स्वीकार किया. तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है मध्य लीला के 9वें अध्याय में, जो ये पयार लिखी गई है बंगाली भाषा में, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है. तो किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में संन्यास के बाद निवास कर रहे थे, तो वहाँ से वो भ्रमण के लिए निकलते हैं दक्षिण भारत के. और दक्षिण भारत में अनेक अनेक स्थानों में चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हैं और अनेक जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, वैष्णव तीर्थ हैं, उन स्थानों को चैतन्य महाप्रभु अपने एक संगी कला कृष्णदास के साथ जाते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के अनेक स्थानों में जाते जाते श्रीपाद मध्वाचार्य का एक स्थान है उडुपी. उडुपी आप जानते होंगे, उडुपी कृष्ण कर्नाटक में आता है ये. तो चैतन्य महाप्रभु उस उडुपी नाम के स्थान में जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु उडुपी कृष्ण का दर्शन करते हैं जो मध्वाचार्य ने उस विग्रह की स्थापना की थी. तो इस श्लोक में उसी का ही वर्णन है, तो हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम विशेष चर्चा करेंगे मध्वाचार्य के बारे में. मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी,
मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी,
उडुपीते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेमोन्मादी,
उडुपीते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेमोन्मादी,
मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी,
मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी,
उडुपीते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेमोन्मादी,
उडुपीते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेमोन्मादी,
मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी,
मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी,
उडुपीते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेमोन्मादी,
उडुपीते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेमोन्मादी.
रिपीट करिए.
मध्वाचार्य स्थाने आयला यहाँ तत्ववादी,
मध्वाचार्य स्थाने आयला
तत्ववादी,
उडुपीते कृष्ण देखी ताहा है प्रेमोन्मादी,
उडुपीते कृष्ण देखी ताहा है प्रेमोन्मादी.
मध्वाचार्य स्थाने आयला यहाँ तत्ववादी उडुपी ते कृष्ण देखी तहा हैलो रे मनमादी मध्वाचार्य स्थाने आयला यहाँ तत्ववादी उडुपिते कृष्ण देखी सहा हैल प्रेम उन्मादी मध्वाचार्य स्थाने आयला जहा तत्ववादी उडुपिते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेम उन्मादी
मध्वाचार्य स्थाने आयला जहा तत्ववादी
उडुपिते कृष्ण देखी
तहा हैल प्रेम उन्मादी
माताजी मध्वाचार्य स्थाने आयला यहाँ तत्ववादी उडुपिते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेम उन्मादी
मध्वाचार्य स्थाने आयला तत्ववादी
उडुपिते कृष्ण देखी तहा हैल प्रेम उन्मादी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से हैं। तत्पश्चात महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान पर पहुंचे जहां तत्ववादी दार्शनिक रहते थे। वे वहां उडुपी नामक स्थान पर रुके और भगवान कृष्ण के अर्च्य विग्रह को देखकर भाव से पागल हो उठे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। मध्वाचार्य स्थाने आयला जहां तत्ववादी उडुपिते कृष्ण देखी तहां हैल प्रेमोन्मादी। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान पर पहुंचे जहां तत्ववादी दार्शनिक रहते थे। वे वहां उडुपी नामक स्थान पर रुके और भगवान कृष्ण के अर्च्य विग्रह को देखकर भाव से पागल हो उठे। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, तो चैतन्य महाप्रभु एक विशेष चीज प्रदान करने के लिए यहाँ आते हैं। और वो विशेष चीज हमारे जो आचार्य हैं वो परंपरा के द्वारा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली जो भगवान नाम संकीर्तन है वो प्रमुख रूप से प्रकट किया इस भौतिक जगत में। और उस जो संकीर्तन है उसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है या गोल है वो प्रदान किया सारे जीवों को। तो हम देखते हैं कि आज जो शुभ दिन है, श्रीपद मध्वाचार्य आज के दिन अवतरित हुए थे कर्नाटक में। तो शास्त्रों में वर्णन आता है मध्वाचार्य के बारे में कई उनके शिष्यों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन एक उनके शिष्य थे नारायण चक्रवर्ती, उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मध्व विजय, श्री मध्व विजय। तो श्री मध्व विजय में मध्वाचार्य के सारे जीवन चरित्र के बारे में बड़े विस्तार से सारी घटनाओं का वर्णन वो करते हैं। तो जो मध्वाचार्य है वो विशेष आचार्य हैं। क्यों विशेष आचार्य हैं? क्योंकि जो कृष्ण हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और स्वयं भगवान मध्वाचार्य के संप्रदाय को स्वीकार करते हैं। जैसे हम इस्कॉन में हैं तो हम श्री मध्वा संप्रदाय में हैं। जैसे कि पद्म पुराण में वर्णन आता है, संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते निष्फलामता, मतलब संप्रदाय के विहीन होकर कोई भी व्यक्ति मंत्र ले लेता है तो वो मंत्र क्या है, निष्फल है। तो उसी प्रकार से प्रभुपद बड़ा जोर देते थे अपने अनुयायियों को और स्ट्रिक्ट रहते थे कि वो कीर्तन करते हैं तो स्पेशली किस नाम का कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का। क्यों? क्योंकि बाकी क्या है, मंत्रास्ते निष्फला मता, मतलब आचार्य चाहे वो भगवान नाम ही क्यों ना हो, बल्कि जो आचार्य हमें जिस बात पर जोर देते हैं तो वो समझना चाहिए कि वो बात परंपरा की है, संप्रदाय की है। और जैसे प्रभुपाद जोर देते थे हरे कृष्ण महामंत्र पर, तो हमें भी उसी को ही अधिक मात्रा में उसका कीर्तन करना चाहिए और उसको गाना चाहिए। बाकी और नए मंत्रों का या नए और पदों का हमें ये नहीं करना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए, या कोई विशेष मंत्र होते हैं। जैसे कि प्रभुपाद के बारे में आता है वर्णन कि प्रभुपाद मुंबई में थे तो उस समय रामनवमी आने वाली थी शायद, तो एक जो सन्यासी हैं वो कहते कि मैं आज शाम से राम नाम गाना शुरू करूँगा, राम मंत्र, हाँ राम धुन गाऊंगा। तो प्रभुपाद को जैसे पता चला तो प्रभुपाद ने तुरंत अपने कमरे से नीचे आए और उनको कहा कोई राम धुन नहीं, केवल हरे कृष्ण धुन आपको गानी चाहिए। तो ये क्या है कि संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फलामता, मैं भी वो हो सकता है भगवान का नाम, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, ये संप्रदाय से विहीन है। हाँ, तो जो वैष्णवाज हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जिस बात को वो स्थापित करते हैं उसी को हमें करना चाहिए। तो पद्म पुराण कहता है संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फलामता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायना, कि अतः कलयुग में चार जो संप्रदाय आएंगे, मतलब सम्यक रूप से जो कृष्ण प्रदान करेंगे वो संप्रदाय हैं। हाँ, बहुत सरलता से कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, उसे संप्रदाय कहते हैं। तो संप्रदाय कलयुग में केवल चार ही होंगे और कोई व्यक्ति इन चार संप्रदायों से शिक्षा प्राप्त करता है, दीक्षा प्राप्त करता है, तभी वो योग्य है भगवान की ओर जाने के लिए, या भगवान की ओर वो अग्रसर हो सकता है। तो इसलिए पद्म पुराण में पहले ही इस बात को स्थापित किया था कि कलियुगा में कौन कौन से संप्रदाय आएंगे और उनके कौन कौन से आचार्य होंगे। तो उसमें कहते हैं श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना, तो कहते हैं कि चार संप्रदाय आएंगे और वो क्या करेंगे, वैष्णवा क्षिति पावना, कि ये जो वैष्णव संप्रदाय और कोई संप्रदाय नहीं, जैसे कि लोग कई सारे नए नए संप्रदाय स्वयं ही शुरू करते हैं, गुरु परंपरा उनसे ही शुरू हो जाती है, वही आचार्य बनते हैं। तो लेकिन हम देखेंगे कि पद्म पुराण इस बात पर जोर देता है कि चार संप्रदाय प्रमुख रूप से आएंगे, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक कुमार संप्रदाय। तो पद्म पुराण कहता है कि ये जो संप्रदाय है वो सारे जगत को पावन करेंगे। और फिर क्या कहता है, चत्वारास्ते कलो भाव्या ही उत्कले पुरुषोत्तमात्, लेकिन ये चारों संप्रदाय का जो निचोड़ है वो उत्कल में या ओरिसा में प्रकट होगा, पुरुषोत्तमात् मतलब जगन्नाथपुरी में। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो आते हैं और वो क्या करते हैं, ये चारों संप्रदायों का जो सार है वो प्रकट करते हैं जगन्नाथपुरी में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो ये चारों जो संप्रदाय हैं उनका अलग अलग दर्शन है और इनके अलग अलग आचार्य हैं। तो कोई भी व्यक्ति इन संप्रदायों से जो भक्ति की विधि है उसको स्वीकार करता है तो वो पूर्णतया भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो उनमें से ही एक ये संप्रदाय है जिस संप्रदाय में हम सब हैं उसे कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय क्योंकि ये ब्रह्मा जी उसके फाउंडर आचार्य हैं, जो मेन आचार्य हैं भगवान के बाद। भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा देते हैं और ब्रह्मा जी के बाद वो शिक्षा आगे परंपरा के द्वारा आगे बढ़ती है। तो ब्रह्मा जी ने जब शंकराचार्य आए थे बौद्ध वाद को खंडन करने के लिए, तो शंकराचार्य जब अवतरित हुए तो उन्होंने मायावाद दर्शन जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। कि श्रील व्यास देव ने वेदांत सूत्र या श्रीमद भागवतम की रचना की थी सारे जीवों को भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये जो शंकराचार्य है उन्होंने क्या किया, मायावाद भाष्य की रचना की वेदांत सूत्र पर, जिनके भाष्य का नाम है शारीरिक भाष्य। तो वेदांत सूत्र पर उनका जो भाष्य था जिसको शारीरिक भाष्य कहते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। तो कोई भी व्यक्ति मायावाद दर्शन को सुनता है वो उससे भ्रमित हो सकता है, या इतना आकर्षक वो दर्शन है सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति उसकी पकड़ में आ सकता है और भगवान की सेवा से वो अलग हो सकता है। तो इसलिए ये जो मायावाद सिद्धांत शंकराचार्य ने स्थापित किया था और पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार था, पूरी तरह से इसकी जो जड़ें हैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो ये जब ब्रह्मा जी स्वयं देखते हैं कि भारत भूमि में मेरे संप्रदाय तो बिल्कुल ख़त्म ही होते जा रहा है, ये परंपरा आगे ये जो नॉलेज है वैष्णव सिद्धांत आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो सारे देवता भी चिंता करने लगे कि भगवत भक्ति का प्रचार नहीं है भारतवर्ष में। और साथ साथ ब्रह्मा जी जो आचार्य हैं उनको भी चिंता लगी कि मेरा जो संप्रदाय है वो भी अभी कमजोर होते जा रहा है। तो इसलिए सारे देवता ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को अप्रोच करते हैं कि बहुत आवश्यक है कि अभी रीएस्टैब्लिश करना मेरा ये जो संप्रदाय है, क्योंकि इसकी टीचिंग्स जैसे भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, ये नॉलेज परंपरा से प्राप्त किया जाता है लेकिन काल क्रम में ये जो ज्ञान क्या है खंडित हो जाता है, विनष्ट नहीं होता ये जो नॉलेज है परंपरा का, लेकिन प्रॉपर फ्लो नहीं रहता है। क्योंकि जो आने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं आचार्यों की शिक्षाओं को, तब ये जो इसमें ये दूषित होने लगती हैं ये जो परंपरा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी स्थापना करने की आवश्यकता है। तो स्वयं फिर भगवान विष्णु कई सारे देवताओं के साथ थे, तो उन्होंने उन सारे देवताओं में से जो सन गॉड हैं, नहीं विंड गॉड, वायु देवता हैं, वायु देवता को कहा कि आप अभी क्योंकि आप में बहुत तेज है और शक्ति है, तो आप अभी चले जाओ और भारत भूमि में एक वैष्णव का रोल अदा करो और आप स्वयं जाकर वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करो। तो जो वायु देवता हैं वो स्वयं आते हैं यहाँ, और वो किस रूप में अवतरित होते हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य के रूप में। और बल्कि वायु देवता के जो विस्तार है पिछले जीवन में हनुमान जी हैं या फिर भीम हैं, तो इस प्रकार से स्वयं जो वायुदेव हैं वो अवतरित होते हैं और वो मध्वाचार्य का रोल अदा करते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि कर्नाटक का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पजाका क्षेत्र, तो इस पजाका क्षेत्र में मध्वाचार्य अवतरित होते हैं। उनके पिता का नाम था मध्य गेह भट्ट और उनकी मदर का नाम था वेदवती। तो ये बहुत अच्छे पति पत्नी थे जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। और उनके गांव से 12 किलोमीटर दूरी पर एक उडुपी नाम का एक आध्यात्मिक स्थान था, तीर्थ स्थान, जहाँ भगवान अनंतेश्वर और चंद्रमौलेश्वर मंदिर था। तो ये दोनों को पुत्र चाहिए था, तो ये क्या करते थे, भागवतम का इन्होंने अध्ययन किया था और आप देखते भागवतम में कि जो कश्यप और आदिति हैं, आदिति और दूसरी दीति, तो आदिति दीति जो कश्यप ऋषि है उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था आदिति और दूसरे थे दीति। तो दीति से दैत्य उत्पन्न हुए डीमंस, हाँ, पहला दैत्य था हिरण्याक्ष, फिर हिरण्यकश्यप और ऐसे काफी सारे आसुर। और जो आदिति है उनसे सारे देवता, इंद्र है, भगवान वामन देव है। तो इस आदित्य ने क्या किया था, भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल व्रत रखा था जिसको पयोव्रत कहते हैं। तो जब इन्होंने वो पढ़ा था तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ उस पयोव्रत का पालन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फिर डेली अपने गांव से 12 किलोमीटर दूरी पर जाकर भगवान की पूजा करते थे बिना किसी आकांक्षा के, और सेवा करते थे कई साल तक। तो फिर आगे चलकर अचानक क्या होता है कि एक व्यक्ति उस भगवान अनंतेश्वर के मंदिर का, जो आपने देखा साउथ इंडियन टेम्पल्स में एक विशेषता होती है, उसके जो गोपुरम्स हैं, गोपुरम का मतलब उसके जो सबसे ऊपरी भाग है, शिखर, क्या कहते हैं, शिखर, गुंबद, हाँ, वो बहुत ऊंचा होता है। मतलब आप उसके नीचे रहोगे कि आपको पता चलेगा कि मैं तुच्छ जीव हूँ और भगवान क्या है, मास्टर है। इसलिए ये मंदिरों के जो शिखर हैं इतने ऊंचे ऊंचे होते थे कि आप उसके नीचे रहोगे कि आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं चींटी हूँ, मैं क्या हूँ, तुच्छ हूँ, और भगवान सर्वोच्च हैं, स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूँ। तो स्वामित्व की भावना नहीं आती। तो इसी कारण बड़े बड़े मंदिर होते थे और लोगों में ये भावना प्रदर्शित होती थी कि भगवान ही मास्टर हैं। तो ये लोग जाते हैं। और दूसरा कि उन मंदिरों के सामने एक पोल होता है, खंबा होता है, साउथ इंडियन, वृंदावन में भी श्री रंगम रंगनाथ जी का मंदिर है जिसके सामने भी एक खंबा है। तो एक जो पुजारी है वो उस खंबे पर चढ़ जाता है और एक पागल की भांति वो करता है और वो जाके ऊपर चिल्लाता है कि जल्द ही एक ऐसे महान पुरुष इस क्षेत्र में प्रकट होने वाले हैं जो अवतरित होकर सारा जो मायावाद सिद्धांत है उसका खंडन करने वाले हैं और वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करके पूरे भारत वर्ष में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो पति पत्नी है मध्यज्ञ भट्ट और वेदवती वापस अपने घर आते हैं। तो कुछ दिनों के बाद उनको एक पुत्र प्राप्ति होती है। तो वो जो पुत्र था छोटा सा बालक, जब मध्यज्ञ भट्ट देखते हैं अपने बालक को तो देख के उनको कृष्ण का स्मरण होता है, इतना उसमें तेज था और शक्तिशाली वो बालक था, छोटा सा ही। तो देखकर ही उनका नाम वो रखते हैं, वासुदेव रखते हैं। और कई प्रकार के जो संस्काराज होते हैं, 12 संस्कार, तो वो कई प्रकार के संस्कार वो शुरू करते हैं। तो उनमें से एक संस्कार था अन्नप्राशन संस्कार, जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो उसे फिर ये जो पति पत्नी है ये उसको सोने के चम्मच से घी पिलाते हैं एक चम्मच, ताकि क्यों, क्योंकि उससे बुद्धि बहुत बलवान होती है और हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, सोने के चम्मच से उसको पिलाते हैं। और दूसरी बार वो क्या करते हैं, उस बालक जन्म लेने के बाद कुछ दिनों में वो उनके मुख में तुलसी दे देते हैं। क्यों तुलसी दी जाती है, क्योंकि बचपन से ही उस बालक की जो मति है कृष्ण की ओर होती है, नेचुरली उसके हृदय में भगवत भक्ति जागृत होती है। और फिर ये लोग हनी भी खिलाते हैं, शहद, ताकि इससे भूख बढ़ती है। तो पूरे जीवन भर ये जो बालक है हेल्थी रहेगा और साथ साथ कृष्ण की सेवा करेगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार से इनका वो ध्यान रखते हैं जो मध्यज्ञ भट्ट और वेदवती हैं। और फिर धीरे धीरे ये जो मध्वाचार्य हैं जिनका नाम वासुदेव था वो बड़े हो जाते हैं और कई प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं अपने बचपन में ही कि उससे पता चलता है कि ये जो बालक हैं ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तो उनके ऐसे कई लीलाज हैं, छोटे छोटे पास टाइम्स, हम कुछ चीज़ें सुनेंगे उनकी, विशेष कुछ ऐसी लीलाएं हैं। तो जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ था 1238 में, 1238 में यहाँ अवतरित हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले। चैतन्य महाप्रभु 1500 समथिंग उस समय अवतरित हुए थे। तो ये जो मध्वाचार्य हैं ये बालक ही थे, तो क्योंकि भगवान की कृपा से उनको ये बालक प्राप्त हुआ था तो माता पिता उनको ले जाते हैं भगवान अनंतेश्वर जो विष्णु का टेम्पल है उडुपी में उनके चरणों में रखने के लिए। तो जंगल होता है बीच में, तो ये जाते हैं और वहाँ कई प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उडुपी में, और फिर ये लोग वापस आते हैं मध्वाचार्य को लेकर जो छोटे बालक थे। तो वापस आने के बाद रास्ते में ही, क्योंकि वो जंगल था तो उस जंगल में रात को ये लोग जर्नी कर रहे थे पैदल, उस समय तो कोई व्हीकल्स नहीं थे। तो जब आ रहे थे तो कई सारे भूत और पिशाच और प्रेत कई सारे ऐसे घूम रहे थे उस एरिया में जंगल में। तो इनके साथ दो लोग भी थे, तो इनके ऊपर अटैक करते हैं वो जो भूत वगैरह हैं। हाँ, तो वो डर जाते हैं उनके माता पिता स्पेशली कि मेरा ये जो बच्चा है इसको कोई हानि ना पहुँचे। तो कुछ समय में स्वयं वो जो भूत या पिशाच है वो बोलने लगते और कहते हैं कि मैं बहुत भयानक रूप से इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ, जब तक मुझे ये आपका बालक जो महान वैष्णव है इसके चरण कमलों की धूली नहीं मिलेगी तब तक मैं इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं होऊंगा। तो हम समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तीन जो शक्तिशाली बल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वैष्णवेर पद धूलि, वैष्णवेर जल और उनका उच्चिष्ट, तीन चीज़ें। तो मध्वाचार्य के बचपन से ही वो जो पिशाच या भूत हैं या जो भी हैं प्रेत योनि वो उनके छोटे से बालक की चरण धूलि, कोई कहेगा कोई मुझे कह रहा था कि उन्होंने तो अभी जमीन में पाँव ही नहीं रखे थे तो धूलि कैसे लग गई। हाँ, क्योंकि वैष्णव के जो चरण है हर समय उस दिव्य धूलि से अंकित होते हैं। हाँ, तो वो उनकी मदर फिर उनका जो पाँव है उसके सर पे रख देती है और तुरंत तो उस योनि से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से मध्वाचार्य अपने ऐसे बचपन के लीला से ये स्थापित करते हैं कि आगे चलकर वो कितने महान वैष्णव बनने वाले हैं। तो एक बार उनको इनके माता पिता खेती करने चले जाते हैं तो अपने एक उनके बड़ी एक बहन के पास उनको रखते हैं। तो छोटे से बालक थे, हर समय रोते रहते थे। तो उस समय जब रखा जाता है और इनका अन्न प्राशन संस्कार नहीं हुआ था, अन्न प्राशन संस्कार का मतलब है कि पहली बार बालक को कुछ अन्न खिलाया जाता है और विशेष वो संस्कार मनाते हैं कई लोगों को बुलाकर। तो इनका तो हुआ ही नहीं था और माता पिता गए थे खेती करने के लिए, तो इनको अपने सिस्टर के पास रखा था और ये रोते ही जा रहे थे। तो उनकी सिस्टर भी तंग आ गई, उन्होंने कहा भी मैं माँ को बुला के लाती हूँ। तो उनके घर में कुछ गाय बैल वगैरह थे और उसके साथ उनका फूड भी था, गाय भैंस या गाय को बैल को कुछ बॉयल करके चने रखे गए थे एक बोरी भर के, तो वो भी उसके सामने थे बैल के सामने। तो इनकी जो बहन है वो क्या करती है, मध्वाचार्य छोटे थे इतने से 5-4 साल के होंगे 2 या 4 साल, तो उनको उठा के उस बोरी के सामने रखते हैं और वो चली जाती हैं और बोरी के सामने रखने से शांत हो जाते हैं। और जो जब चली गई तो ये जो वासुदेव है वो बोरी को तोड़ने लगते हैं और ऐसा वर्णन आता है प्रभुपाद भी इसका आप सब तात्पर्य पढ़ सकते हैं इस श्लोक का, जिसमें प्रभुपाद ने पूरा लाइफ जो मध्वाचार्य का है वो एक एक लाइन में बताए हैं ये सारे स्टोरीज। तो मध्वाचार्य छोटे से बालक ही थे तो वो क्या करते हैं उस बोरी को तोड़ते हैं और पूरा 40 किलो का जो बोरी है वो खा जाते हो बैल का जो भोजन है। इस प्रकार से उनका अन्न प्राशन संस्कार होता है। तो उनकी माँ आती है और वो देखती है कि ये कैसे मेरा ये जो बालक है अद्भुत, बल्कि प्रभुपाद लिखते हैं कि बड़ा से बड़ा बैल भी उसको पूरे बोरी को नहीं खा सकता है, बल्कि इन्होंने इतनी छोटी अवस्था में खा लिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये है वृकोदर, भीम का नाम आता है भगवद्गीता में, वृकोदर मीन्स कि जिनकी भूख आती बहुत बड़ी है, जो कितनी भी मात्रा में इस क्वांटिटी को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य के ऐसे अनेक छोटी छोटी लीलाएं हैं, और एक लीला तो कृष्ण की लीला से ही मिलती है। आपको स्मरण होगा, कृष्णा बुक में पढ़ते हैं तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कृष्ण बहुत छोटे बालक थे, तो माता यशोदा और रोहिणी हैं, हर समय उनकी लीलाओं में ऑब्जर्व रहती थी, मग्न रहती थी। तो ये छोटे से बच्चे थे, तो ये हर समय जहाँ गव्वे बांधे जाते थे वहाँ चले जाते थे बछड़ों के बीच, और बछड़ों के बीच जाकर क्या करते थे, बछड़ों का पूछ पकड़ते थे। और वो इतने छोटे थे कि बछड़े जैसे पूछ पकड़े, आप किसी बछड़े का पूछ पकड़ के देखिए वो कैसे दौड़ता है, तो बछड़े दौड़ने लगते थे। और कृष्ण और बलराम बिल्कुल छोटे ही थे, वो भी उनके पीछे फ्लैट हो जाते हैं, वो गिरते हैं और सारे गोबर में और गोमूत्र में और इनमें पूरे घूमते रहते हैं। तो उसी प्रकार से मध्वाचार्य का भी एक पास टाइम आता है कि एक दिन देखा उनकी माँ ने कि मेरा छोटा बच्चा कहाँ चला गया है, तो पूरे दिन ये लोग ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, बड़े परेशान। हाँ, तो मध्वाचार्य शाम के समय उनकी माँ ढूंढने के लिए निकलती थी, देखती हैं ओ मध्वाचार्य क्या है, एक बहुत बड़ा बैल था उस गांव का और सबसे डेंजर बैल, कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता था या अप्रोच नहीं कर सकता था। तो मध्वाचार्य ये जो वासुदेव है सुबह उठते जाता है उस गौशाला में, उस बैल की पूछ पकड़ लेता है, और जैसे पूछ पकड़ता है वो दौड़ते रहता है बैल पूरे दिन। हाँ, तो वर्णन आता है कि वो जो वासुदेव हैं उस बैल के पीछे दौड़ते ही जा रहे थे पूरे दिन, और बिल्कुल हंस रहे हैं, हाँ बीच बीच में नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से जो मध्वाचार्य है जो अपनी छोटी छोटी बाल लीलाएँ करते हैं, और बचपन से ही उनको स्वाभाविक आकर्षण था कृष्ण के प्रति। हाँ, अपने माता पिता के साथ कभी किसी रिलेटिव्स के घर जाते थे फेस्टिवल में, तो सब लोग जब लोग एकत्रित होते घर के कार्यक्रमों में, शादी में या और कई फंक्शंस में, तो पूरा प्रजल्पा करते हैं, फुल्ली वो जो भौतिक चर्चा करते हैं। तो ये मध्वाचार्य वासुदेव के बहुत अच्छा नहीं लगता था, कभी माता पिता ले जाते थे तो वहाँ से वो भाग जाते थे कई घंटे, और किसी टेम्पल में जाकर भगवान की प्रेयर्स गाते थे जाकर डेटिस के सामने। हाँ, तो वो बचपन से ही उनका जो स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति था, और बहुत ही वो स्ट्रिक्ट थे और इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने बचपन से ही वहाँ कई सारे आसुरों का वध किया था, मतलब मारा था, या ऐसे आचार्य थे। तो जो मध्वाचार्य अपीयर होते हैं आज के ही दिन विजयादशमी के दिन, और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जिनके द्वारा कई हम चीज़ें सीख सकते हैं। तो बचपन में उनके पिता उनको पढ़ाया करते थे, लेकिन पिताजी पढ़ाने से पहले वो बता देते थे कि ये चीज़ आप मुझे पढ़ाने जा रहे हो आज, या उनको सारी चीज़ें आती थी अपने आप ही। तो स्कूल में भी भेजते थे इनको, तो कभी स्कूल में नहीं रहते थे मध्वाचार्य, स्कूल जाते थे क्लास शुरू होते ही बाहर निकलते थे और जाके प्रसाद खाते थे घर माँ ने बनाया हुआ, और जब छूटने वाला होता है स्कूल तब आते थे और फिर निकलते थे। हाँ, क्योंकि इतने बुद्धिमान थे बचपन से ही कि उनको कोई चीज़ सीखने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, ऐसे आचार्य थे। तो बचपन से ही वो सारे जो शास्त्र हैं हाँ उनमें पारंगत थे। हाँ, जो मध्वाचार्य हैं, जब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हाँ, और मुझे अभी ये सब पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो मध्वाचार्य जब स्कूल से आते थे, और उनकी माँ कभी कभी देखती थी कि मेरा जो बालक है वो आ नहीं रहा है, बहुत लेट हो रहा है, तो उनको जब चिंता होती थी तो अपने स्कूल से ही, हाँ, स्कूल के पास के स्थान से ही वो जंप लगाते थे, और जंप लगा के सीधा ही घर के आंगन में। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने जंप लगाए और सीधा घर के आंगन में वो गिरे जोर से अपने, और खड़े रहे माँ के सामने। तो आज भी डिवोटेड जाते हैं मध्वाचार्य के उस स्थान को देखने, तो मध्वाचार्य ने जहाँ अपने कदम रखे थे वो स्थान की आज भी पूजा करते हैं, वहाँ ऐसे उनके चिन्ह हैं उनके चरणों के। क्यों? क्योंकि मध्वाचार्य कभी हनुमान के आवेश में आ जाते थे और कभी भीम के आवेश में। हाँ, और इस युग में इस समय वो इस मध्वाचार्य के रूप में वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो उन्होंने जब अपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि हे पिता, अभी मुझे ये सब पढ़ना नहीं है। और उनके जो पिता हैं उस समय उनकी मैरिज की बात कर रहे थे, बल्कि उनकी आयु 11 साल की थी। हाँ, जैसे पहले प्राचीन समय में बचपन में ही विवाह होता था। तो उनके पिताजी ढूंढ ही रहे थे कोई विशेष कन्या, तो मध्वाचार्य की कोई रुचि नहीं थी मैरिज करने में। तो मध्वाचार्य क्या करते हैं, कहते अपने पिता को कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे अभी नहीं रहना है आपके साथ, मुझे अभी संन्यास लेना है। इसलिए वो अपने पिता को छोड़ देते हैं 11 साल की आयु में और उडुपी चले जाते हैं। तो उडुपी में क्योंकि उस समय क्या होता था कि मायावाद संप्रदाय के जो आचार्याज हैं उनका इतना प्रभाव था कि कोई भी व्यक्ति जो वैष्णव संप्रदाय है वो छुप छुप के भजन करते थे, ओपनली नहीं होते थे वैष्णव आचार्याज ब्रह्म संप्रदाय के या बाकी संप्रदाय के, मतलब वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गए ऐसे लगता था। तो मध्वाचार्य को उडुपी में बहुत सर्च करने के बाद एक छोटा सा टेंपल मिला जिसमें ये ब्रह्म संप्रदाय के टीचिंग्स फॉलो करते थे। तो जब ये टीचिंग्स फॉलो करते थे तो मध्वाचार्य जाते हैं उनके पास, और उनके पास जाकर कई प्रकार की शिक्षाएं लेते हैं मध्व संप्रदाय की, वैष्णव सिद्धांत की। और उनको कहते हैं, जो वैष्णव आचार्य थे उस समय उनका नाम था अच्युत प्रेक्ष, तो अच्युत प्रेक्ष से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं। और दीक्षा लेने के बाद जो उनका नाम है वो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ होता है। और उनके पिता मना करते हैं कि आप मत जाओ हमें छोड़कर, हम तो आप तो अकेले बेटे हो और हम बूढ़े हैं, हमारी देखभाल कौन करेगा। तो लेकिन मध्वाचार्य कहते कि नहीं, मुझे संन्यास लेना ही है और मैं आपके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है अपने जीवन में। तो लेकिन उनके पिताजी बहुत दुखी थे, तो मध्वाचार्य को परमिशन ही नहीं देते थे। लेकिन मध्वाचार्य क्या कहते थे कि जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक मैं संन्यास नहीं लूँगा। और कभी कभी जाकर उडुपी में जाकर वो संन्यास डंडा ले लेते थे हाथ में, कौपिन धारण करते थे और सैफ्रॉन ड्रेस धारण करते थे और कहते देखो मैं अभी सन्यासी हूँ। हाँ, तो इस मूड में रहते थे हमेशा, संन्यास लेने के मूड में। तो अंतिम समय में कैसे तो उनके जो माता पिता हैं उनको परमिशन देते, क्योंकि ये कहते यदि आप मुझे परमिशन नहीं दोगे तो आगे से आप मुझे कभी भी आपके पास नहीं देख पाओगे, मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तो उनके पिता बहुत ही दयाद्र होकर उनको संन्यास प्रदान करते हैं, उनको परमिशन देते हैं। और परमिशन देने के बाद जो मध्वाचार्य है वासुदेव संन्यास ग्रहण करते हैं, और संन्यास के बाद वो अपना प्रचार कार्य शुरू करते हैं। जैसे कि हर एक वैष्णव है तो उनके वैष्णव में तीन चीज़ें होती हैं, एक है उनका मूड, दूसरा होता है मिशन और एक होता है लाइफस्टाइल। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो वैष्णवाज हैं, अलग अलग आचार्याज हैं, उनमें कुछ विशेषता है उनका मूड। जैसे कि जो मध्वाचार्य है वो वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते थे, वात्सल्य भाव में, तो इनका विशेष मूड प्रकट होता है। और एक होता है मिशन, तो मध्वाचार्य का जो महत्वपूर्ण मिशन है वो क्या था, मायावाद का खंडन करना। और तीसरी चीज़ होती है लाइफ स्टाइल, तो हर एक वैष्णव का यूनिकनेस होती है उनके स्वभाव की, उनके आचरण की, उनके बिहेवियर की। तो ये तीन चीज़ें प्रमुख रूप से किसी भी वैष्णव में प्रकट होती हैं। तो जो मध्वाचार्य हैं उनका जो मिशन मेनली ये था, मायावाद सिद्धांत का खंडन करना। तो मध्वाचार्य बचपन से ही 12 साल की आयु से उन्होंने संन्यास लिया और उडुपी के हर एक स्थान में पेड़ के नीचे बैठकर वो लेक्चर्स देते थे, उन्होंने लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। और शंकराचार्य जो इतने बड़े आचार्य थे उनके जो सिद्धांत है उसका ओपनली खंडन करने लगे और हजारों हजारों लोग उनके वो लेक्चर्स अटेंड करने आते थे। और बचपन से ही कई लोगों को कन्वर्ट किया, मायावाद सिद्धांत से उन्होंने बाहर निकाल दिया और हजारों हजारों लोगों को उन्होंने भक्त बना लिया। तो इसी कारण आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके संप्रदाय को स्वीकार किया था विशेष रूप से, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम महात्म्य में कहते हैं कि जो मध्वाचार्य है वो नवदीप में आए थे, हाँ चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने से पहले वो नवदीप में आए थे मोदद्रम द्वीप में, और मध्वाचार्य आते और वहाँ रेस्ट करते हैं, तो रात को सपने में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और मध्वाचार्य को कहते हैं कि हे मध्वा मैं अभी आने वाला हूँ और आप क्या करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो और जो मायावाद स्क्रिप्चर्स है उनका खंडन करना शुरू करो और मैं आकर आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर काफ़ी चर्चा करते हैं उससे संबंधित नवदीप धाम महात्म्य में। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं इस मध्वाचार्य के संप्रदाय से दो चीज़ें स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं कि जो चार संप्रदाय हैं उनके उनमें कुछ विशेष यूनिकनेस है, कुछ विशेष गुण है, कुछ विशेष शिक्षाओं पर जोर दिया गया है। चारों संप्रदायों में अलग अलग शिक्षाओं पर जोर दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जब प्रकट होते हैं तो अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपना ये जो सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, हाँ तो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की स्थापना करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इन चारों संप्रदायों से दो दो शिक्षाएं लेते हैं और फिर उनको स्थापित करते हैं इस गौड़िया संप्रदाय में। चैतन्य महाप्रभु इस गौड़िया सिद्धांत की स्थापना करते हैं। अब देखेंगे कि ब्रह्मा जी के बाद व्यासदेव हैं, फिर नारद जी हैं, फिर मध्वाचार्य हैं, मध्वाचार्य से परंपरा आगे बढ़ती है तो फिर उनको कनेक्ट होती है माधवेंद्रपुरी से, और माधवेंद्रपुरी से फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, ईश्वरपुरी हैं, चैतन्य महाप्रभु, छे गोस्वामी और फिर और आचार्य और शैल प्रभुपाद। तो इस प्रकार से ये जो परंपरा आगे बढ़ती है, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो सिद्धांत है उसको स्थापन करने के लिए जो चार संप्रदाय हैं उनमें से दो विशेष चीज़ें ली हैं। तो उन्होंने मध्वाचार्य के संप्रदाय से दो चीज़ें ली। तो मध्वाचार्य से क्या लिया, एक तो लिया मायावाद का खंडन, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी वो बात आती है निर्विशेष शून्यवादी, हाँ तो मायावाद का खंडन करना ये उन्होंने मध्वाचार्य के संप्रदाय से ली एक चीज़। और दूसरी चीज़ उन्होंने ली कि कृष्ण मूर्तिर सेवन, हाँ कृष्ण के डिटीज़ का सेवा करना, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, ये दो चीज़ें मध्वाचार्य के संप्रदाय में प्रमुख है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दो चीज़ें ली उनसे। और जो रामानुज संप्रदाय है या श्री संप्रदाय है जो लक्ष्मी जी से शुरू होता है, हाँ लक्ष्मी जी से शुरू होकर रामानुज आचार्य बनते हैं उनके प्रमुख, और उनसे चैतन्य महाप्रभु दो शिक्षा लेते हैं। एक लेते हैं भक्त जन सेवा, कि भक्तों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, उस सिद्धांत को दो चैतन्य महाप्रभु लेते हैं रामानुजाचार्य से। और एक है अनन्य भक्ति, अहेतु की भक्ति, मतलब बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी मांग के या बिना किसी सैलरी के, बिना किसी इच्छा के कृष्ण की अहेतु की भक्ति करना, कृष्ण को सर्व करना, तो ये दो चीज़ें रामानुजाचार्य से लेते हैं। और जो विष्णु स्वामी है रुद्र संप्रदाय जिसके आचार्य विष्णु स्वामी, तो रुद्र संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु दो चीज़ें लेते हैं। एक है तदीय सर्वस्व भाव, मतलब पूरी तरह से कृष्ण पर समर्पित हो जाना या डिपेंड होना, या कृष्ण ही एकमात्र मेरे रक्षक है चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हूँ। तो ये जो भावना है वो चैतन्य महाप्रभु विष्णु स्वामी या रुद्र संप्रदाय से लेते हैं। और दूसरा है राग मार्ग, मतलब स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, इस विधि को स्वीकार करते चैतन्य महाप्रभु। और जो चौथा संप्रदाय है जिसके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य आप देखेंगे जो चारों आचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतरित हुए थे, हाँ मध्वाचार्य भी आए थे, निम्बार्काचार्य केशव कश्मीरी के रूप में आए थे, हाँ चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हैं तो वर्णन आता है केशव कश्मीरी के रूप में निम्बार्काचार्य आते हैं। और निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। तो कुमार संप्रदाय क्या है, चार जो कुमाराज हैं, हाँ सनक सनातन सनत कुमार इनसे जो परंपरा शुरू हुई है, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे दो शिक्षा लेते हैं। एक है गोपी भाव, हाँ, कि गोपीज का जो मूड है, गोपियों का मूड क्या है, शिक्षाष्टकम में आखिरी श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या है उसकी शुरुआत, अश्लेष्य वा पादरताम पिनस्तुमाम, आदर्शनम मर महताम, कि आप दर्शन दे या ना दे, आप मेरा आलिंगन करें या दूर करें, लेकिन मैं क्या करूँगा, आपकी सेवा करते रहूँगा। तो ये है कि इस प्रकार से ब्रज में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं जो ब्रजवासीज हैं। और जो दूसरी शिक्षा है निम्बारकाचार्य से, वो है एकांत राधिकाश्रय, कि जो श्रीमती राधा रानी सारे भक्तों में सर्वोच्च हैं और कृष्ण की परम प्रिय हैं, उनका आश्रय लेना है, उनके आश्रय से ही हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मध्वाचार्य हैं, जिन्होंने संन्यास लेने के बाद इस सिद्धांत का प्रचार उन्होंने शुरू किया और मायावाद का उन्होंने खंडन किया, इस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत में ये प्रचार किया। और उनके जो गुरु थे जिनका नाम था अच्युत प्रेक्ष, उनको इतना प्रेम था मध्वाचार्य से, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा शिष्य दूंगा जो मायावाद का पूरी तरह से खंडन करेगा और आगे चलकर वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करेगा। तो वो अच्युत प्रेक्ष ढूंढ ही रहे थे कि कौन ऐसा शिष्य है, तो वो जान गए कि ये मेरा शिष्य है, जो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ या मध्वाचार्य है, जो सारे वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करेगा। तो इसलिए वो इतने फेमस हो गए अपने बचपन से ही, स्पेशली प्रीचिंग एक्टिविटीज में। और मध्वाचार्य इतना प्रचार करने लगे और श्रीमद् भागवतम पर क्लासेस देते थे और दिन रात भागवतम का अध्ययन करते थे, इसलिए सारे वैष्णवों ने वहाँ साउथ में उनको उपाधि दी। वो उपाधि क्या थी, भगवत पाद, जैसे हमारे महाराज को भी ये उपाधि है भगवत पाद, तो ये मध्वाचार्य को उपाधि दी गई थी भगवत पाद, कि जो श्रीमद् भागवतम के जो मैसेज है उसको प्रीच करते हैं हर प्रकार के लोगों में, पुरुष है, स्त्री है, पतित लोग हैं, और उनके हृदय में कृष्ण भावना जागृत करते हैं, उनको भगवत पाद कहते हैं। तो मध्वाचार्य को ये टाइटल मिलता है भगवत पाद, और आगे चलकर उस संप्रदाय के ये आचार्य बन जाते हैं और फिर प्रचार कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो गुरु थे अच्युत प्रेक्ष, उनको मध्वाचार्य से बहुत अनुराग हो गया था, बहुत अटैचमेंट हो गया था। तो उनके जो गुरु हैं वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ये जो मध्वाचार्य मुझसे दूर चला जाए। तो एक दिन अपने गुरु के पास जाते और कहते हैं कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है गंगा में स्नान करने की, तो बल्कि दक्षिण भारत में गंगा है नहीं, तो उनको आना पड़ेगा, यहाँ हरिद्वार आना पड़ेगा या इस तरफ आना पड़ेगा नॉर्थ में। तो उनके गुरु तो बहुत कष्ट होता है कि ये मध्वाचार्य मुझसे दूर जा रहे हैं। तो रात को भगवान को प्रार्थना करते हैं उनके गुरुदेव की, प्लीज़ अरेंज करिए कि ये मुझसे दूर ना चले जाए। तो कृष्ण अरेंज करते हैं कि गंगा नदी ही वहाँ बहने लगती है, उनके वहाँ जो एक सरोवर था उसी में ही गंगा नदी प्रकट होती है और जल आता है 3 दिन के लिए। और आज भी कहा जाता है, आज भी कई वैष्णव जाते हैं वहाँ उस 3 दिनों के लिए, वहाँ जाकर स्नान करते हैं। तो मध्वाचार्य फिर उसी में स्नान करके शांत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे गुरुदेव नहीं चाहते हैं मुझसे अलग होना। तो लेकिन अगली बार फिर वो अपने गुरुदेव को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अभी 7 साल हो गए हैं संन्यास लेकर, मुझे अभी बद्रिकाश्रम हिमालयस की यात्रा करनी है। क्यों, क्योंकि मेरे जो इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर है श्रील व्यासदेव, उनको मुझे मिलना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो तब तक उन्होंने दक्षिण भारत में भगवद गीता पर कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम था हरि गीता भाषण। तो वो भगवद गीता की एक जो कॉपी है वो अपने गुरुदेव को देते हैं और एक कॉपी अपने साथ लेकर हिमालयास की यात्रा करते हैं। तो हिमालय की ओर जब बढ़ते हैं तो वो अपने साथ अपने एक शिष्य उनको लेते हैं जिनका नाम था सत्य तीर्थ, बहुत ही फेमस उनके जो एक शिष्य हुए हैं। तो उनको लेते हुए मध्वाचार्य हिमालय की जर्नी करते हैं। और आप जानते हैं कि जो बद्रिक आश्रम है, लोग जाते बद्रीनाथ, तो ऐसी 5 बद्रियाँ हैं, जैसे एक बद्रिक आश्रम है वैसे और 5 चीज़ें हैं, उत्तर बद्री है, दक्षिण बद्री है, ऐसे। तो वहां श्रील व्यासदेव आज भी निवास कर रहे हैं, लेकिन वो जो सर्वोच्च स्थान है हिमालयास का, जहां कोई व्यक्ति नॉर्मल शरीर से नहीं जा सकता, उस स्थान में श्रील व्यासदेव निवास करते हैं। महाभारत में आप पढ़ते हैं कि जब भी ये आवश्यकता होती थी पांडवास को किसी कार्य के लिए, तो व्यासदेव वहां से चलते हुए आते थे दिल्ली, यहाँ आकर इनसे फिर जो भी एक्टिविटीज या सलाह देना, लेक्चर्स देना, ये सब कार्य करते थे। तो आज भी वो निवास करते हैं। तो मध्वाचार्य अपने शिष्य को वहां रुका कर वो व्यासदेव को मिलने के लिए जाते हैं। तो श्रील व्यासदेव, बल्कि उनके जो शिष्य थे वो कहते, नहीं मैं आपके साथ ही चलूंगा। मध्वाचार्य कहते, तुम्हारे लिए असंभव है। तो सत्यतीर्थ कहता, नहीं मुझे आपके साथ ही चलना है। तो कई मील दूरी पर जाने के बाद वहां ना हवा होती है ना कुछ, तो उनका जो शिष्य है वो चल भी नहीं पाता। तो मध्वाचार्य कहते कि तुम वापस जाओ, वहां एक आनंद मठ है, वहां जाके रहो। तो ऊपर से जस्ट वो फूक मारते हैं तो उनका जो शिष्य है वो उड़ते हुए सीधा बाकी आनंद मठ में जाके गिरता है उनके शिष्यों के, बाकी शिष्यों के बीच। हाँ, तो ऐसे मध्वाचार्य ट्रैवल करते हैं। तो जाते देखते हैं कि बहुत ही हाइटेड और शक्तिशाली एक आचार्य एक पेड़ के नीचे बैठे हैं अपने कई सारे ऋषियों के साथ, और उनको भागवतम सुना रहे हैं या भगवत कथा कर रहे हैं। तो व्यासदेव को देखते ही वो प्रणाम करते हैं और व्यासदेव तुरंत उठ जाते हैं वहां से, और व्यासदेव उनका आलिंगन करते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य का, और मध्वाचार्य का आलिंगन करते हुए व्यासदेव बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी यहाँ ही रहो मेरे पास। तो फिर कुछ दिनों के लिए वो वहाँ रहते हैं। और उससे पहले जब बद्रिकाश्रम जाते हैं तो जहाँ नर नारायण ऋषि है, अर्जुन और कृष्ण उस फॉर्म में है नर नारायण ऋषि के, तो ये जो मध्वाचार्य हैं वो अपनी कॉमेंट्री पूरी रात बद्रिकाश्रम का जो टेम्पल है उसके दरवाजे बंद करके अंदर अपना भगवद्गीता का कॉमेंट्री पढ़ाते हैं उनको, भगवान को। और भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि आपका जो कॉमेंट्री है बहुत ही परफेक्ट है। और उसके बाद वो फिर व्यासदेव से मिलते हैं। तो व्यासदेव से मिलने के बाद व्यासदेव से कई चीज़ों की वे शिक्षा लेते हैं और फिर अपना कॉमेंट्री लिखते हैं वेदांत सूत्र पर। तो इस प्रकार से जब वो वापस आते हैं हिमालया से, तो हिमालय से वापस आते समय वो नवद्वीप गए थे जब वो जा रहे थे दक्षिण भारत। तो नवद्वीप जाते हैं और फिर से अपना प्रचार कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी खासियत क्या थी कि ये कभी नहीं देख सकते थे कि हर कोई व्यक्ति भौतिक कार्यकलापों में लगा हुआ है। जिसको भी देखते थे तो इनके हृदय में यही होता था कि ये कृष्ण का भक्त बन जाए, तो किसी ना किसी प्रकार से भक्त बना देते थे। क्योंकि मध्वाचार्य एक ऐसे आचार्य हैं जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए तो फेमस थे ही, उन्होंने तो कई 37 बुक्स उन्होंने लिखी हैं, मेन जो ग्रंथ हैं, लेकिन उनका शारीरिक बल भी बहुत बड़ा था। मध्वाचार्य जब भी ट्रैवल करते थे बिहार से बंगाल से, तो कोई भी बड़े बड़े लोग मिलते थे तो उनको अपना शिष्य बना लेते थे, या तो उसके साथ कुश्ती करके या फिर उनको हरा कर नॉलेज से, तो ऐसे करके उनको कृष्ण मंत्र देते थे और भक्त बना लेते थे। तो जब वो दक्षिण भारत पहुंचे तो इतने फेमस थे कि वहाँ के कुछ ऐसे जो बलशाली लोग हैं, एक दो भाई थे जो बहुत ही अपने आप में उनको गर्व था अपने शक्ति का, क्योंकि वो पहलवान थे बहुत बड़े। तो एक दिन मध्वाचार्य को चैलेंज करने लगे कि आप नहीं जानते कि मेरे पास कितना शक्ति है कि 30 लोग नहीं उठा सकते, इतना बड़ा पत्थर मैं उठा के कितने किलोमीटर दूरी पर रखता हूँ। और वो मध्वाचार्य को कहने लगा कि एक नारियल का पेड़ है था जिसके ऊपर बहुत सारे नारियल थे, मैं गया और उस नारियल के पेड़ को किक लगाने मात्र से सारे नारियल नीचे गिर गए, एक भी नहीं बचा, और उसके साथ साथ नारियल का पेड़ भी टूट गया। तो मध्वाचार्य देखते हैं कि ये बहुत अहंकार इसमें आ रहा है अपने भौतिक शारीरिक बल के लिए, का बड़ा घमंड है। क्योंकि दो बल होते हैं, एक होता है आत्मबल और एक होता है शारीरिक बल। तो बलराम जी आध्यात्मिक बल देते हैं, या जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे आता है वो आत्मबल या आध्यात्मिक बल है। तो शारीरिक बल के लिए ये जो बहुत घमंड इनको हो गया था, तो मध्वाचार्य कहते ठीक है आप शाम के समय आना, और उस समय जब मैं अपने जो ड्यूटीज़ हैं जिनका नाम था उडुपी कृष्ण। जब हिमालया से आए थे तो एक रात को मध्वाचार्य अपने मठ से बाहर निकलते हैं, केवल अपना ऐसे चद्दर ओढ़ के और भगवान का कीर्तन करते हुए अकेले प्रेयर्स गाते हुए जाते हैं। तो उन्होंने जाते जाते द्वादश स्तोत्र उन्होंने बनाए थे मन में ही, 12 श्लोकाज। आज भी उनके फॉलोअर्स उन 12 श्लोकों को गाते हैं, जैसे हम शिक्षास्तकम को गाते हैं, तो उसी प्रकार से द्वादश स्तोत्र हैं जो मध्वाचार्य ने लिखा है, जिसको उनके फॉलोअर्स गाते हैं रेगुलरली उन प्रेयर्स को। तो मध्वाचार्य रात को जब बाहर निकलते हैं तो समंदर के किनारे जाते हैं, कई किलोमीटर चलते हुए हैं, और वो दूर से देखते हैं कि एक जो बोट है वो आ रही है और वो फंस रही है, वो डूबने ही वाली है। तो मध्वाचार्य तो वायु देवता है, तो वो अपना चद्दर ऊपर निकालते हैं और उसमें डंडा जो संन्यास दंड है उसको डालते हुए उनको इशारा करते हैं, और साथ साथ हवा को भी छोड़ते हैं, और वो बोट है बहुत इजीली ऊपर आती है और किनारे में आ जाती है जब मध्वाचार्य खड़े थे। तो जितने बहुत सारे लोग थे और वो जो उसका कैप्टन वगैरह सब उतरते हैं और इनको प्रणाम करते हैं इस सन्यासी को, और कहते हैं कि आपके कारण हमारे जीवन की रक्षा हुई है। तो मध्वाचार्य पूछते कि आप कहाँ से आए हैं, और वो लोग कह रहे थे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो ले लीजिए हमसे। तो ये पूछते कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो कैप्टन कहता है कि हम द्वारका से आए हैं। तो मध्वाचार्य कहते कि हाँ, तो ज़रूर आपके पास गोपी चंदन होगा, हाँ, जो हम तिलक लगाते हैं, तो आप मुझे गोपी चंदन दे सकते हैं या तिलक दे सकते हैं। तो कहते कि हाँ, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े वो ढेला था, क्या कहते हैं हिंदी में, ढेला, तो वो है। तो लोग वो उतारने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि इतना बड़ा चंदन गोपी तिलक का वो था कि कोई उतार नहीं सकता उस ढेले को। तो मध्वाचार्य स्वयं जाते हैं, हाँ, क्योंकि इतने स्ट्रांग है वो कि गए और अपने भुजाओं में उस ठेले को उठाया, बल्कि 20 लोग नहीं उठा पा रहे थे, और उसको उठाकर चलने लगे अपने आश्रम की ओर। और जाते जाते वो ठेला बीच में रखा उन्होंने, तो वो टूटा, तो उसमें से एक बलराम का डीटीज मिला उनको। तो उस गांव में फिर वो बलराम के डीटी की स्थापना करते हैं, और फिर अपने प्रेयर्स गाते हुए वो आगे निकलते मध्वाचार्य। और आगे जाकर जब अपने स्थान में जाते हैं तो उस तिलक को रखते हैं, तो देखते हैं कि उसमें से कृष्ण प्रकट होते हैं, कृष्ण का बाल रूप, हाँ, बल्कि वात्सल्य भाव में है, तो कृष्ण भी एक बाल रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे कृष्ण उस डीटी के हाथ में रस्सी था और एक हाथ में गव्य चराने के लिए एक स्टिक था। तो मध्वाचार्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं, तो उनकी स्थापना करते हैं मध्वाचार्य। तो ये डेटी जो द्वारका से आए थे ये बहुत पुराने थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वसुदेव और देवकी हैं, जिन्होंने कृष्ण को तो जन्म दिया, मतलब कृष्ण उनके द्वारा अपीयर हुए हैं, लेकिन उनके बाल लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाए, या बाल लीलाओं को वो देख नहीं पाए अपने सामने। तो जब द्वारका में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था और मथुरा आए थे, और मथुरा से अपने सारे मथुरा वासियों को उन्होंने ट्रांसफर किया था द्वारका में, तो द्वारका में जब रह रहे थे तो जो देवकी है उनको हर समय ये दुख होता था कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, हाँ, कि मुझे कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का मौका नहीं मिला। तो कृष्ण उनके पास थे, तो कृष्ण कहते कि आपकी बाल लीलाओं का आस्वादन तो नंद महाराज और यशोदा माता ने किया है, मैं नहीं कर पाए, तो प्लीज़ आप मुझे अपने कुछ बाल लीलाएँ दिखाओ। तो कृष्ण तुरंत द्वारका के उस महल में छोटे बालक बन जाते हैं, राजा थे वहाँ, लेकिन अब मदर के लिए बालक होते हैं और माखन खा रहे हैं और घूम रहे हैं इधर उधर। तो उस समय मदर जो देवकी है वो देखती है, तो लेकिन उसके साथ साथ इस फॉर्म में कृष्ण को देखा था देवकी ने, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में रुक्मिणी भी थी, तो रुक्मिणी ने भी उस फॉर्म को देखा था, रुक्मिणी ने, तो कृष्ण इस रूप में है, तो बहुत अटैचमेंट उनका हुआ था छोटे से बालक के फॉर्म में कृष्ण के। तो रुक्मिणी फिर कृष्ण को कहती है कि आप मुझे एक अपना डीटीज दे दीजिए जिनको मैं पूजा करूँ। तो कृष्ण विश्वकर्मा के द्वारा ये जो डीटी है उडुपी कृष्णा उनको बनाते हैं और रुक्मिणी को देते हैं, और रुक्मिणी रेगुलर उनकी पूजा करती रहती थी। और बाद में देखा जाता है कि जब यदुवंश का नाश होता है, सारे यदुवंश के जो पुरुष है वो विनष्ट हो जाते हैं, फिर स्त्रियों को सारे इतने सारे रानियों को अर्जुन लेने के लिए आते हस्तिनापुर से, 16,100 रानियों को वो ले जाते हैं अर्जुन। तो उस समय सारा द्वारका अस्त व्यस्त हो गया था, तो उस समय ये जो डेटी भी एक लेक में डाली जाती है, सरोवर में, जहाँ से अभी गोपी चंदन निकलता है। तो ये डेटीज उस चंदन मिट्टी के अंदर चली गई थी, और यही डेटी जो लोग ले आए थे अपनी बोट में, जो मध्वाचार्य को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो मध्वाचार्य है इस विग्रह को प्राप्त करते हैं और इनकी स्थापना करते हैं, और अपने शिष्यों को उनकी सेवा में लगाते हैं। बल्कि मध्वाचार्य केवल 1.5 घंटे के लिए सोते थे, बाकी समय में ड्यूटी वर्शिप करते थे, प्रचार करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। हाँ, फुल्ली ये फोकस थे इन एक्टिविटीज़ के लिए। और उन्होंने अपने टेम्पल में, उन्होंने छोटा ही टेम्पल बनाया, लेकिन ज़्यादा फोकस था सेवा में और प्रचार कार्य में, बल्कि वो बहुत बड़ा मंदिर बना सकते थे। तो लेकिन मध्वाचार्य ने क्या किया, जैसे उस मध्वाचार्य ने जब स्थापना की थी, उस डेटी का जो फेस है वो पूरब की ओर था, और लेकिन एक बार कोई एक डिवोटी, एक व्यक्ति जाता है जिनको अलाउड नहीं करते दर्शन करने, तो वो भगवान के बैक साइड में होता है, हाँ, टेम्पल के, तो प्रेयर करता है और बड़ा उसके अंदर ईगरनेस होता है भगवान को देखने के लिए। तो वो जो उडुपी कृष्ण है वो घूम जाते हैं अपने आप ही, और वो दीवार भी टूट जाती है और भगवान पीछे की ओर देख रहे हैं अभी भी, और वहाँ से डिवोटीज दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से उडुपी कृष्ण की सेवा करते थे और उनके लिए रेगुलर कीर्तन करते थे मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य ने एक अपने मंदिर में रूल बनाया था, और आज भी उसका पालन किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में आता है तो उसको चरणामृत मिलना चाहिए, हाँ, और प्रसाद मिलना चाहिए थोड़ा सा। तो आज भी आप जाते हैं उडुपी कृष्णा का दर्शन करने, तो वहाँ जो भी आते गेस्ट उनके लिए प्रसाद होता है और स्पेशल उडुपी कृष्ण का चरणामृत होता है। तो उडुपी कृष्ण के लिए ये बैठे रहते थे उस डीटीज के सामने, और उनके लिए कीर्तन करते थे, उनके लिए प्रेयर्स गाते थे, और शाम के समय स्पेशली वो कीर्तन करते थे अपने शिष्यों के साथ और गाते थे। तो जैसे मैं वो एक स्टोरी कनेक्ट कर रहा था कि जो दो ब्रदर्स थे जिनको अपने बॉडीली शारीरिक शक्ति का बड़ा घमंड था, तो मध्वाचार्य ने कहा कि फिर शाम के समय आओ, जब मैं अपने उड़ु कृष्ण के लिए प्रेयर्स गाता हूँ, हाँ, कीर्तन करता, उस समय तुम आ जाना। और तुम क्या करना, मेरी जो नेक है, क्या कहते इसको, गर्दन, हाँ, कंठ को दबा देना, देखता हो कितनी शक्ति है तुम्हें। हाँ, तो वो दोनों भाई शाम को आते हैं और मध्वाचार्य बैठते हैं उडुपी कृष्ण के सामने अपने आसन पर, और बहुत सुंदर प्रेयर्स गाते रहते हैं कृष्ण के लिए। हाँ, सारे डिवोटीज भी उनके साथ साथ चांट करते हैं। तो मध्वाचार्य गाते जा रहे थे, वो आए और उन्होंने सोचा ठीक है अभी हम करते हैं शुरू अपना सेवा। तो वो मध्वाचार्य का जो गर्दन है या जो कंठ है वो दबाने लगते हैं चोर से, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो दबा ही नहीं पाते, हाँ, बिल्कुल थक जाते, पसीना निकलने लगता है। फिर दूसरा ब्रदर आता है, वो भी दबाता है, फिर भी हाँ वो नहीं दबा पाते। तो मध्वाचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य ने कहा कि आप लोग मेरा ये कंठ या जो गर्दन है वो दबा पाओगे तो मैं अपना हार स्वीकार करूँगा, लेकिन ये लोग स्वीकार उनसे होता नहीं। तो मध्वाचार्य कहते ठीक है, चलो अभी नया एक्सरसाइज देता हूँ। मध्वाचार्य अपना अंगूठा पाव का निकालते हैं अपने धोती से बाहर और जमीन पर रखते हैं, कहते हैं कि आप दोनों मेरा ये जो अंगूठा है वो उठा के दिखाओ। तो ऐसे कई पास टाइम्स है, स्पेशली शारीरिक बल जब मध्वाचार्य ने प्रकट किया है, तो दोनों भाई कितना भी प्रयास करते हैं मध्वाचार्य का अंगूठा नहीं उठा पाते। तो एक बार एक व्यक्ति को मध्वाचार्य कहते मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो जमीन पर रखते और कहते कि इसको उठा के दिखाओ, और नहीं उठाओगे तो आपको कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य ने कई सारे जो लोग हैं, बद्ध जीव हैं, उनको भक्त बनाया था, और ये स्वयं हनुमान है। और ये जब पूजा करते थे अपने डिटीज का तो लॉक कर देते थे दरवाजा बाहर से, तो उनके डिसाइपल्स सोचते थे हमारे गुरुदेव क्या कर रहे हैं अंदर। तो एक शिष्य ने लेकिन एक बार देख लिया, क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि मध्वाचार्य तीन फॉर्म में प्रकट हुए हैं। हाँ, एक फॉर्म में वो व्यासदेव की पूजा कर रहे हैं, श्रीपद मध्वाचार्य का फॉर्म वो व्यासदेव की पूजा कर रहे, दूसरा फॉर्म भीम का था और भीम से वो कृष्ण की सेवा कर रहे थे, और तीसरा फॉर्म हनुमान जी का था और राम की सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो सामान्य आचार्य नहीं हैं, जिनके बारे में कई ऐसी लीलाज आती हैं और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कई सारे ग्रंथों में, तो एक वर्णन आता है कि दूसरी बार जब वो हिमालय जा रहे थे तो उस समय बहुत चोर होते थे, तो मध्वाचार्य के इस ग्रुप के ऊपर उन्होंने अपने साथ 50 सन्यासी और कुछ गृहस्था डिवोटीज और कुछ ब्रह्मचारी लेकर हिमालय की यात्रा कर रहे थे। तो उस समय एक चोरों का ग्रुप आता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, दूर से ही देखते हैं कि चोर आ रहे हैं, तो मध्वाचार्य क्या करते हैं अपना ये निकालते चादर और उसमें देखते रास्ते में बहुत सारे पत्थर डाल देते हैं और उसको बांध देते हैं, और जैसे चोर नज़दीक आते हैं और वो फेंक देते हैं तो चोरों को लगता है कि ये सोना है। हाँ, तो चोर वो खोलने से पहले आपस में फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और मध्वाचार्य अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इतने शक्तिशाली थे। और एक वर्णन आता है कि जब साउथ से वो महाराष्ट्र क्रॉस करके नॉर्थ आ रहे थे दिल्ली, तो एक राजा होता था महाराष्ट्र में, बहुत ही डेंजर राजा, मतलब बहुत चैरिटेबल वर्क करेगा, दान देगा, कुएं खोदेगा, सरोवर बनाएगा, लेकिन वो क्या करता था, जितने भी जो यात्री है उनसे सारा धन लेता था और उन्हीं से खुदवाता था, सब करवाता था, फिर छोड़ देता था। तो मध्वाचार्य इतने सारे 50 सन्यासी और ब्रह्मचारी और गृहस्थ डिवोटीज को लेके जा रहे थे, उसने देखा ये तो बहुत अच्छा टीम है, तो उन्होंने एक सरोवर खोदना शुरू किया था। तो उनके सैनिकों ने कहा कि आपको ये खोदना ही पड़ेगा, खुदाई करनी होगी। तो मध्वाचार्य की क्वालिटी क्या थी कि एक बार वो किसी से बात करने लगे तो वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता था, वो व्यक्ति कुछ और नहीं सोच सकता था। हाँ, मध्वाचार्य के जो विचार हैं वही उसको करना पड़ता था, अपने विचार से नहीं कर सकता वो व्यक्ति। तो मध्वाचार्य कहते ठीक है, हाँ, क्योंकि हम तो साधु हैं, हमें पता नहीं कि कैसे खुदाई करनी है, घास काटनी है, कुछ नहीं पता। तो राजा को कहता है आप सिखाओ, तो राजा तुरंत अपने आसन से उतरता है, उसके हाथ में वो क्या कुदाल दी जाती है, और राजा और उसके मंत्री सब कुदाल लेके खुदाई करने लगते हैं, और मध्वाचार्य और ये सारे भक्त देखते हैं, और वो खुदाई करते ही रहते हैं, और मध्वाचार्य अपने शिष्यों को लेके फिर निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य क्या ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज और इतने शक्तिशाली थे कि जब हिमालयाज में अपने शिष्य के साथ चलते हैं सत्य तीर्थ, तो एक शेर हमला करता है, तो मध्वाचार्य देखते हैं। और उनके वो सत्य तीर्थ की खासियत क्या थी कि वो एक भी क्षण ऐसा नहीं गवाते थे जब वो भगवान का नाम नहीं लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मध्वाचार्य ने देखा कि बल्कि वो शेर उसके ऊपर है, उनके शिष्य के ऊपर, सन्यासी शिष्य थे, और वो जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करते जा रहे। तो मध्वाचार्य ने देखा ये शेर खाने जा रहा है मेरे शिष्य को, तो गए और एक जोर से एक थप्पड़ लगा दिया उसको ना, अपने इससे मारा, तो तुरंत वो प्राण त्याग देता है वो जो शेर है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य कई ऐसे सुंदर पास टाइम्स हैं जिनका वर्णन कई सारे ग्रंथों में आता है, और मध्वाचार्य विशेष रूप से भगवान की जो सेवा है वो करते थे। और उनका एक एक विशेष लीला है, उनका प्रसादम लीला, आप सोच सकते हैं कि शारीरिक बल इतना है तो उनका फूड का क्वांटिटी कितना होगा। तो वर्णन आता है, प्रभुपाद भी लिखते हैं कि एक बार केरला गए थे मध्वाचार्य। हाँ, तो केरला गए तो कई सारे वैष्णवों ने ब्राह्मणों ने उनको अप्रोच किया था, तो एक दिन वहाँ मध्वाचार्य को बहुत भूख लगती है, तो एक जो डिवोटी है उनके लिए 4,000 केले ले आता है, और मध्वाचार्य अकेले उनके ग्रुप के लिए नहीं मध्वाचार्य के लिए वो केले रखे जाते हैं 4,000 और कई घड़े दूध के 200-300 लीटर दूध। तो मध्वाचार्य बैठते थे और दोनों हाथों से दूध पीते थे घड़े और साथ साथ केले खाते थे इतने सारे। तो इतना उनका ये था, इतना वो प्रसाद पाते थे और साथ साथ कभी उनको सर्विंग करते थे अपने शिष्यों को। तो एक छोटा सा बर्तन हो तो उसमें मैं भी थोड़ा सा दूध है एक कप, तो इतना दूध उससे निकलता था कि हजारों शिष्य क्यों ना बैठे हो उन सबको मिल जाता था ज़्यादा क्वांटिटी में। हाँ, तो ऐसे अद्भुत आचार्य हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझा। आप चाहे कितने पंडित या दार्शनिक क्यों ना हो लेकिन वैष्णवों के जो कार्यकलाप हैं उनको बाहरी रूप से आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वैष्णवों को जानना हो तो उनकी शरण ग्रहण करनी होगी वैष्णवों की या भगवान की। तो भगवान के द्वारा है वैष्णवों को जाना जा सकता है। तो मध्वाचार्य अपने पूरे जीवन में प्रचार कार्य करते थे और वो भी चाहते थे अपने शिष्यों को स्पेशली उपदेश देते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शिष्य हैं स्पेशली प्रचार करें और कीर्तन करने में वो एक्सपर्ट हो जाए, कीर्तन करें और प्रेयर्स कंपोज करें। वो कहते थे अपने शिष्यों के लिए कि ये तीन कार्यों में मेरे शिष्य ये होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। और साथ साथ मध्वाचार्य जो 108 उपनिषद आज है उनमें से एक उपनिषद है आयतरीय उपनिषद। तो मध्वाचार्य का सबसे फेवरेट बुक था ये आयतरीय उपनिषद, हर समय उसको पढ़ते थे और उसी पर ही उन्होंने अपना भाष्य भी लिखा था। और मध्वाचार्य जब गाते थे तो हर एक चीज़, बल्कि चैतन्य महाप्रभु का जो झारखंड का पास्ट टाइम है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और सारे जो पशु हैं हाँ सब चीज़ें भूलकर, ईर्ष्या द्वेष भूलकर, शत्रुता भूलकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, हाथी हिरण शेर। तो उसी प्रकार मध्वाचार्य भी जब कीर्तन करते थे जंगल में जाते हुए तो मनुष्य कई सारे ऐसे गांव के लोग और शेर अपने गले में हाथ डाल के गाते थे और कीर्तन करते थे कई पशु। तो एक गांव में मध्वाचार्य को बुलाया जाता है कीर्तन और लेक्चर के लिए। तो मध्वाचार्य जाते हैं तो आप जब गा रहे होते हैं भगवान नाम तो अपने हाथ में एक ये लेते हैं सीड, एक बीज लेते हैं और मध्वाचार्य जैसे गाते हैं वैसे उनके हाथ में जो सीड है बीज है वो अंकुरित होने लगता है। जैसे जैसे गाते जा रहे वैसे वैसे वो बीज अंकुरित होते जाता था। तो वर्णन आता है कि वो बीज पूरी तरह से अंकुरित हो जाता है और एक पेड़ का रूप धारण करता है। तो ऐसे ही अनेक लीलाएं मध्वाचार्य ने की हैं। तो उनका जो मेन जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है कि उन्होंने द्वैतवाद का द्वैताद्वैतवाद मतलब इन्होंने क्या किया, जब लॉर्ड बुद्धा आए उन्होंने कहा सब कुछ क्या है शून्य है, और शंकराचार्य आए उन्होंने क्या कहा एक है सब कुछ एक है, फिर मध्वाचार्य आए उन्होंने क्या कहा एक नहीं है दो है, हाँ भगवान अलग है और जीव अलग है। इस सिद्धांत की स्थापना मध्वाचार्य ने की थी और फिर मध्वाचार्य ने अपने इन सारे लीलाओं का ये किया, पूर्ण विराम दिया अपने कार्यकलापों को। एक दिन मध्वाचार्य स्पेशली जोर देते थे उनके फॉलोअर्स को एकादशी व्रत रखने के लिए। तो मध्वाचार्य अपने अंतिम समय में अनंतेश्वर मंदिर में बैठते हैं, अपने शिष्यों को एक सारे शिष्यों को बुलाते हैं और वहाँ बैठकर मध्वाचार्य उनको लेक्चर दे रहे होते हैं। और इतने फेमस आचार्य थे मध्वाचार्य कि उस समय देवी देवता भी ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे, बल्कि देवी देवता दिखाई नहीं दे रहे थे, आकाश से पुष्प गिर रहे थे और उनके हजारों शिष्य देख रहे थे। और इतने सारे पुष्प वर्षा हुई थी कि मध्वाचार्य लेक्चर दे रहे थे तो पूरी तरह से ढक गए वो फूलों से। हाँ, बोले तो सन्यासियों को चिंता हो गई कि अभी कुछ डिवोटी जाने चाहिए फूलों को हटाने के लिए। और तो दो सन्यासी जाते हैं, उन सत्य तीर्थ उनके जो फेमस शिष्य थे और एक सन्यासी, और फूलों को हटाने लगते हैं, तो हटाते तो क्या दिखते हैं, दिखाई देता है कि मध्वाचार्य अप्रकट हो गए हैं। हाँ, तो मध्वाचार्य इस प्रकार से अप्रकट हो गए। हाँ, मध्वाचार्य ने कहा था, पहले ही कहा था कि मेरा आपको शरीर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मैं आपने जो इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर हैं श्रील व्यासदेव, उनके पास चला जाऊंगा। इस प्रकार से मध्वाचार्य जो महान आचार्य हैं, जिनसे हम कई प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं, और स्पेशली श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में कई एक आधे चैप्टर में तो उनका ही वर्णन किया है, उनकी शिक्षाओं का, उनके सिद्धांत का, उनके फॉलोवर्स का। चैतन्य महाप्रभु ने उनके कौन कौन से स्थानों में विजिट किया, उनके मठ मठ तो उनकी क्या शिक्षा है, तो काफ़ी चीज़ें चैतन्य चरितामृत में दी हैं, तो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। और तो इस प्रकार से जब आविर्भाव या तिरोभाव होता है किसी वैष्णव या वैष्णव आचार्यों का, तो बहुत विशेष दिन होता है वो दिन। हाँ, बर्थडे, जैसे आज उनका बर्थडे है ना, तो किसी का जन्मदिन होता है तो उस दिन वो औदार्य प्रकट करता है। औदार्य जानते हैं ना आप, औदार्य का मतलब होता है कि जैसे पानी का ग्लास है, ये भरा हुआ है, तो ये औदार्य तभी होगा जब भय के नीचे गिरेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं कि वो बाहर कृपा क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो उस दिन स्पेशल डे होता है, उन आचार्यों को हम पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, या जो अनुराग आपके पास है, वो मुझे प्रदान कीजिए, या कुछ विशेष चीज़ों के लिए हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रीपाद मध्वाचार्य हैं जिन्होंने श्री चैतन्य महा जिनका संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, और जिनकी शिक्षाओं को श्रील प्रभुपाद ने एक प्रकार से पूरे विश्व में फैलाया। श्रीपाद मध्वाचार्य के, श्रील प्रभुपाद के निदाय गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है? हाँ, रवि कृष्ण।
ये आपने जैसे बताया जो वायुदेव है वो सब मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए, तो मुझे देखा जाता है कि हम लोग हैं जो भी ये गाँव के बहुत ज़्यादा बहिष्कार करते हैं या उपासना का खंडन करते हैं, तो इसमें जो वायुदेव है वो भी देवता है
एक्चुअली। देवता, हाँ बताएं।
मेरी जो देवता है, मैंने पता कि कितने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, लेकिन हम लोग बहुत ही आसानी से उसका खंडन करते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जो देवी देवता है तो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया जो मध्वाचार्य हैं भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, और वही देवी देवता है।
तो एक्चुअली जो देवता हैं वो डिवोटीज ही हैं, लेकिन और अधिक क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट की सेवाज होती हैं। देवताओं के पास क्या सेवा है, मैनेज करना, तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन और अधिक सेवा करने के लिए वो आते हैं अलग अलग आचार्यों के रूप में, जैसे कि हरिदास ठाकुर हैं, वो लॉर्ड ब्रह्मा है कि नहीं, बल्कि वो नामाचार्य हैं। तो इस प्रकार से देवता भी कोई इसलिए वो असाधारण नहीं है जो देवी देवता हैं, वो भगवान के भक्ति हैं, लेकिन पूर्णतया वो ये नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। तो उनमें भी कुछ ना कुछ अभिलाषाएं हैं, जैसे इंद्र हैं या काफ़ी डेमीगॉड्स हैं जिनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है भगवान से। तो लेकिन ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेमीगॉड्स हैं जो भगवान के इस लीला में ये रोल अदा करने के लिए आते हैं, ये भी एक पास टाइम है वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करने के लिए मध्वाचार्य आते हैं। जैसे कृष्ण लीला है, तो अपने हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अप्रोच करते हैं क्षुरदक्षाई विष्णु को, और वो कहते हैं कि आप सब यदुकुल में अवतरित हो जाइए देवताओं को, तो कई सारे देवता ही हैं कृष्ण की लीलाओं में भाग ले रहे हैं। तो भगवान उनसे उस स्पेसिफिक सेवा लेते हैं, और उनको फिर क्या कहते हैं, और अधिक शुद्ध होने का वो देते हैं साधन प्रदान करते हैं।
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है,
कि डिग्री का तो एक पोजीशन है, तो क्या वो एक्सपेंड करते हैं या फिर मतलब मान लीजिए वायुदेव जो है जो भी सोल थे वो वायुदेव के रूप में थे और बाद में मध्वाचार्य के रूप में आए, तो वायुदेव कोई की पोजीशन किसी और ने ली या उन्होंने एक्सपेंड किया?
नहीं, एक्सपेंड किया, भगवान साथ साथ उनको इस प्रकार की शक्ति भी देते हैं एक्चुअली, साथ साथ दो एक्टिविटी करने के लिए।
जैसे चार प्रामाणिक संप्रदाय बताए गए हैं और हम ये भी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से दो दो शिक्षा ली और कर दिया, तो क्या ये समझना ठीक नहीं कि एक तरह से आज के टाइम में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के आगे जो आ रही है परंपरा वही परंपरा बची है, बाकी सब क्षीण हो चुकी है?
हाँ, ये भी है वैसे, लेकिन हमारे आचार्य उनको स्वीकार करते अभी भी कुछ परंपराज हैं जो अपनी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, लेकिन ये वर्णन आता है कि अभी जो बड़े ही तीव्रता से कोई परंपरा अवेलेबल है, मतलब पूर्णतया सिद्धांत और इस रूप से क्लियर है, वो चैतन्य महाप्रभु की ये परंपरा है। और वैसे वर्णन भी आता है कि वैसे देखा जाए हम ये कॉन्ट्रोवर्सी है थोड़ी सी, मतलब वैसे हम ब्रह्म संप्रदाय में भी नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है ना चैतन्य महाप्रभु, तो परंपरा किससे शुरू होती है? चैतन्य महाप्रभु से शुरू होती है, भगवान से शुरू होती है, तो लेकिन फिर भी भगवान ने शिक्षा देने के लिए उस ब्रह्म संप्रदाय को स्वीकार करते मध्वाचार्य को कि हर एक संप्रदाय से ही शिक्षा लेनी चाहिए। क्या ऐसा होता ही नहीं, कोई माता पिता नहीं कहेंगे कि मेरे बेटे आपको इतना पढ़ाया लिखाया अभी आप जाओ कृष्ण की सेवा करो, नहीं हो सकता। हाँ, तो एक्चुअली भगवद गीता का तात्पर्य पढ़ते हैं पहले श्लोक का जिसमें प्रभुपाद भागवतम का श्लोक कोट करते हैं, क्योंकि कृष्ण की सेवा करते हैं कोई व्यक्ति लगता है तो उसको कोई और संसारिक किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं देवर्षि भूता तृणाम पितृणाम, जब मैं अपने पर्सनल रियलाइजेशन बताता हूँ, जब मैं सोच रहा था कि ज्वाइन करना है फुल टाइम इस्कॉन, तो पहले ये बात आ रही थी कि माता पिता की सेवा पाप तो नहीं लगेगा। हाँ, जब नए नए इस्कॉन से कनेक्ट हो गए थे फिर कई सारे रूल्स होते हैं ना, जैसे देवताओं के रूल है कि आप हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, साधुओं से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, माता पिता ने इतना आपके लिए बचपन से, हाँ जो माता पिता उनको पता है कि कितना एनर्जी लगता है बच्चों के लिए, तो जब मैं सोच रहा था कि तो बड़ा पाप लगेगा कैसे फुल टाइम हो आ जाए, तो फिर अचानक जब मैं भगवद गीता पढ़ रहा था, ऑलरेडी पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया था स्पेसिफिक, तो फिर से जब पढ़ा तो पहले चैप्टर में प्रभुपाद ने वो श्लोक कोट किया है देवर्षि भूता तृणाम पितृणाम नायम ऋणिच राजन गतो मुकुंद परिहर्त्य कृत्यम, कि भगवान मुकुंद की जो मुक्ति देने वाले हैं उनकी शरण को ग्रहण करता है तो देवर्षि देवताओं के ऋण उसको अदा नहीं करने पड़ते, मतलब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, देवर्षि जो साधुज हैं या नृणाम राजा हैं पितृणाम माता पिता हैं, ऐसे कई सारे वर्णन है उस श्लोक में, तो वो व्यक्ति इन सब के ऋण से मुक्त हो जाता है यदि व्यक्ति केवल मुकुंद की शरण ग्रहण करता है। हाँ, तो तब मैंने सोचा कि हाँ फिर ठीक है। तो इस प्रकार से आवश्यक नहीं है। हाँ, तो लेकिन इसलिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए उतनी मात्रा में डे बाय डे, हमें क्या करना चाहिए अधिक अधिक मात्रा में कृष्ण के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए, तो इतना आवश्यक नहीं है।
ये आपने बताया था जो केशव कश्मीरी है वो लंबा का चार है,
हाँ
हाँ की बात,
हाँ,
और महाप्रभु की लीला में जो चार संप्रदायों के आचार्य हैं,
हाँ,
वो चारों उनकी लीला में है,
हाँ,
तो वो तीन
बाकी वल्लभाचार्य थे इसके, वल्लभाचार्य किसी एक वल्लभाचार्य का आता है ना वर्णन, वो भी थे और ऐसे बाकी छोटे छोटे डिवोटीज के रूप में हैं दो आचार्य कृष्ण गौर लीला में, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कल, तो एक वल्लभाचार्य थे।
मध्वाचार्य संप्रदाय है उसे महाप्रभु ने दिया मायावाद का खंडन शिवलिंग की पूजा।
हाँ प्रभु जी ने लिखा हुआ है शायद क्लियरली। मायावाद सिद्धांत है कि हाँ मायावाद जो शंकराचार्य ने स्थापित किया था कि जो जीव और भगवान, हाँ या जीव है वो भगवान बन सकता है या भगवान में हम लीन हो जाएंगे या हम सब भगवान हैं, कई ऐसी शिक्षा है ना कि हम सब भगवान हैं, तो ये मायावाद सिद्धांत है कि भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा है।
की बात हो रही है बारह संस्कार, तो उसमें से बताया वो संस्कार करके बुढ़िया जो भी सोने का कुछ पिला तो उससे जो बुद्धि है वो बढ़ सकती है। पर तो जी बुद्धि तो सभी बॉडी का पार्ट है और वो तो जन जन्मांतर से चलती आ रही है।
नहीं लेकिन एक्चुअली एक जो संस्कार होते हैं वो इसीलिए है प्योरिफिकेशन के लिए, ये जो संस्काराज हैं ये प्योरिफिकेशन के लिए होते हैं, तो ये प्योरीफाई करने के लिए ये प्रोसेस है। बुद्धि तो अल्टीमेट भगवान से ही हमें प्राप्त होती है किसी भी जीव को। ठीक फिर नहीं हमें जैसे अभी जैसे आपने कल महाराज से उदाहरण सीखा होगा, महाराज आए यहाँ और महाराज पहले गए क्योंकि देखते आध्यात्मिक रूप से, महाराज कहते हैं जाते समय भी कार में कह रहे थे महाराज कि वहाँ दुर्गा देवी का मंदिर है, वहाँ के शीज योग माया कह रहे थे महाराज कि वो योग माया है, कृष्ण की लीलाओं में सहायक है, यहाँ राधा कृष्ण है और महाराज ने कहा ना धाम रक्षक है यहाँ शिव जी हैं। तो जो वैष्णव है इस प्रकार से देखता है और प्रेयर्स करने चाहिए हमें, आवश्यक नहीं है बाकी सेलिब्रेशन वगैरह के, क्योंकि वो अधिक प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं सारे लोग जो हैं। हनुमान जी कभी नहीं, हनुमान जी ने प्रकट किया कि आप मेरी सेवा करो, तो हनुमान जी क्या करते वो सबको कृष्ण राम की सेवा में लगाते हैं। शिव जी हैं वो भी चाहते कि उनकी सेवा में लगे, तो वैष्णव जो इस दृष्टि से देखता है जैसे महाराज ने कल ये प्रैक्टिकली किया भी था, यहाँ आते ही ससुर महाराज के कि धाम के रक्षक है जो लॉर्ड शिवा है भगवान के सबसे, वैष्णवानाम यथा शंभु भक्तों में सर्वोच्च भक्त हैं तो उनको प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है बाकी चीज़ें सेलिब्रेट करें। कोई वो दिन आता है तो स्पेशल प्रेयर कर सकते हैं हम दुर्गा जी के संग, प्लीज़ आप तो इस जेल के रक्षक हैं है कि नहीं, और इस जेल से मुझे बाहर निकालो आप कृपा करो। हाँ उनके हाथ में त्रिशूल है, तीन प्रकार के दुख देती रहती हैं हाँ, ताकि कृष्ण के शरणागत हो जाए। और दुर्गा देवी को कस्टम अधिकारी भी कहा जाता है कि नहीं, डिवोटीज कहते कि क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हैं ना, क्यों माया देवी चेक करती है कस्टम, क्योंकि क्या जब कस्टम अधिकारी चेक करते आप इस देश से दूसरे देश में ले जाते, तो आप भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा रहे हो तो फुल्ली आप शुद्ध हो कि नहीं वो बार बार परीक्षा हो रही है आपकी, मतलब भगवान के समान आपको शुद्ध बनना है। भगवान क्या है, परम पवित्र है, तो हमें भी परम पवित्र बनना है तभी आध्यात्मिक जगत में। तो हम अप्रोच कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं उनको, दुर्गा जी को हनुमान जी को, कि आप में इतना दास्य भाव इतना सेवा का एटीट्यूड है, मेरे हृदय में भी कुछ सर्विस का एटीट्यूड डेवलप होने दीजिए कृष्ण के लिए। शिव जी को प्रणाम कर सकते हैं, वो वैष्णव हैं, शिव जी के बारे में तो भागवतम से कई ग्लोरीज पढ़ सकते हैं, तो मेरे लिए आवश्यक नहीं है। ठीक हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली प्रभुपाद जोर देते थे स्पेशली कि हम फिक्स रहें हरे कृष्ण महामंत्र, और नया इन्वेंट ना करे कुछ चीज़। अब मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन आप मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम गाते हैं कीर्तन ना, जैसे तुलसी आरती है कि नहीं, तुलसी आरती को कैसे गाते हैं डिवोटी, तुम्हें सेवा तुम्हें जोड़ दिया, बल्कि बात तुम्हें है ही नहीं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, तो कभी कभी हम गाते तुम्हें सेवा अधिकार दिए, मतलब तुम्हें जोड़ दिया, तो कोई जोड़ना भी नहीं है और ऐड नहीं करना है। अब प्रभुपाद की सुन, प्रभुपाद ने काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और जैसे किसी भी समय में कुछ भी गाते हैं। एक बार मायापुर में प्रभुपाद मंगल आरती होने वाले थे, तो भोग लगता है ना 4 से 4:30 ड्यूटीज को मॉर्निंग, तो डिवोटीज गए थे, प्रभुपाद अपने रूम में थे और डिवोटीज आए थे टेंपल हॉल में, तो भक्तों ने नया नया सीखा था कि जब भोग लगता है तो भज भकत वत्सल गाना चाहिए। तो 4 बजे, बल्कि सन्यासी थे और डिवोटीज, तो 4 बजे सुबह उन्होंने मंगल आरती 4:30 थी, तो 4 बजे उन्होंने ये शुरू कर दिया, भज भकत वत्सल गौर हरे। प्रभुपाद ने डांट लगाई कि ये नहीं, राजभोग आरती के लिए गाना चाहिए दोपहर के समय। या फिर कुछ डिवोटीज गाते थे हरे कृष्ण महामंत्र है ना, तो उसको भी हम कैसे ये करते हैं, भज हरे कृष्ण, या फिर बोलो हरे कृष्ण गाते ना, गाते गाते जोड़ देते, क्या जोड़ते, बोलो। हाँ, तो ये उचित नहीं है। ये क्या है, ये उचित नहीं है, हमारा प्योरिफिकेशन नहीं होगा। तो यथावत यथारूप गाना चाहिए उस मंत्राज को, और ऐसे काफ़ी मुझे याद नहीं आ रहे, काफ़ी ऐसी चर्चा। हाँ, हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर और व्यासदेव को दीजिए, हरि गीता भाष्य। और क्या भजन, प्रभुपाद ने मना किया था बाद में शुरुआत के समय। हाँ, प्रभुपाद ने, हाँ भजन है कई बार, भज श्री कृष्णा चय, प्रभुपाद ने मना किया गाने के लिए, तो प्रभुपाद ने रोका है कई बार वृंदावन में कीर्तन। और ये भी है, हाँ, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, सपोर्टिव है कीर्तन के लिए। हमें ये नहीं सुनना है कितना वंडरफुली मृदंग क्लियर हो रहा है, कितना अच्छा करताल बज रहा है, हाँ, हमें तो नाम सुनना है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि कई बार हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, कीर्तन में अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि हम क्योंकि कीर्तन में नाम को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि कई बार इतना इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज़ हो जाता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो ख़त्म हो जाता है, सुनाई भी नहीं देता, तो वैसा नहीं करना चाहिए हमें, इंस्ट्रूमेंट्स धीमी मात्रा में बजाना चाहिए। प्रभुपाद एक बार कृष्ण बलराम मंदिर में थे, तो प्रभुपाद ने देखा कि एक डिवोटी गा रहा है मॉर्निंग में गुरु पूजा या गौर आरती गा रहा था शायद शाम को, तो एक डिवोटी बड़ा अच्छा मृदंग सीखा था उसने, काफ़ी सारे ला ताल सुर, और तो हर एक का अपना होता है ना, वही हमें क्या टेंडेंसी है, मैं अपना एक्सपर्टीज प्रेजेंट करो दूसरों के सामने, हमारे अंदर ये स्वाभाविक है ना, हम चाहते दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हर कोई दिखाना चाहता है अपनी टेंडेंसीज, मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, तो वो भी अपना एक्सपर्टीज दिखा रहा था, और प्रभुपाद भी थेवा, तो वो अपना मृदंग बजा रहा था और डिवोटी कीर्तन कर रहा था बहुत सिंपल वे से, तो जोर जोर से मृदंग बजा रहा है और काफ़ी अपना सार तुल, बल्कि जो गा रहा है उसी के अनुसार ही मृदंग बजना चाहिए और धीमे आवाज़ में, ताकि वो सुनाई दे हरे नाम। तो प्रभुपाद ने पहली बार कहा कि उसको बोलो जाकर शिष्य को बजाओ, उसको धीरे धीरे बजाओ, ठीक से बजाओ, हाँ, और फिर से उसने धीरे किया, फिर प्रभुपाद धीरे धीरे फिर से वैसे ही शुरू कर दिया, और फिर प्रभुपाद ने बड़ा उनको गुस्सा आ गया, और प्रभुपाद ने कहा जाओ उसके मृदंग गले से मृदंग ही निकाल के रख दो, तो उसके गले से मृदंग निकाल के रख दिया जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी आवश्यक होती है हमें नाचते समय भी। हाँ, मेन क्या है फोकस, क्योंकि हम नाच रहे हैं तो हमें यही भावना है मैं कौन हूँ, या गा रहे हैं तो हम सिंगर हैं राधा कृष्ण जो राजा और रानी है उनको आनंद प्रदान के लिए करने के लिए मैं गा रहा हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए, या उनके लिए मैं नृत्य कर रहा हूँ जैसे राजा रानी के इसमें जोकर्स रखते हैं ना एंटरटेन करने के लिए, हाँ वैसे ही हम हैं एक्चुअली कि राधा कृष्ण जो क्वीन और किंग है तो उनको आनंद प्रदान करने के लिए हम यहाँ हैं, और ऐसी भावना नहीं है तो फिर प्योरिफिकेशन नहीं होगा मे बी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन, बहुत जन्म तक हम श्रवण कीर्तन करेंगे तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, फिर भी हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम धन है वो जागृत नहीं होगा, तो ये चीज़ें आवश्यक है हमें ध्यान रखना अध्यात्म जीवन। हाँ ना एक्चुअली भगवान की योजना है लेकिन देवता भगवान की योजना से ये नहीं होते, क्या है भगवान की योजना को जानते नहीं है देवता, तो इसलिए वो उनको समझ में नहीं आता इसलिए अप्रोच करते भगवान को। ठीक से आप शिक्षाष्टकम में सारे टीचिंग्स हैं, आप ध्यान से शिक्षाष्टकम को स्टडी करते हैं। एक्चुअली शिक्षाष्टकम को वेदों का सार कहा जाता है, सारे जो ग्रंथ हैं उनका जो सार है ये शिक्षाष्टकम, हाँ वेदों का सार जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये किया है। हाँ महाप्रभु ने, आप जानते ना महाप्रभु ने कोई लिखा नहीं है, महाप्रभु ने केवल 8 श्लोकों की रचना की है, बल्कि महाप्रभु ने एक ही बुक लिखा था न्याय सिद्धांत जिसका नाम था हाँ बंगाल में, लेकिन जब वो नाव में जा रहे थे आपके मित्र अपने मित्र के साथ तो उसने भी उसने कहा कि मैंने ये बुक लिखा है, उनकी भी कॉपी थी महाप्रभु के अपने पहली जो रिटर्न कॉपी थी अपने हाथ में थी, तो अपने फ्रेंड को ये दिलाने के लिए क्योंकि फिर दोनों एक ही सब्जेक्ट पर दो बुक्स हो जाएंगे, तो महाप्रभु क्या करते हैं गंगा में अपना नाव में जाते जाते अपना बुक फेंक देते हैं पानी में और उन्हीं के बुक को ये करते हैं आगे बढ़ाते हैं। और लॉर्ड चैतन्य ने लिखा हुआ है आप मायापुर जाते हैं तो एक स्थान है मायापुर से 2 घंटे दूरी पर अंबिका कालना जहाँ गौरीदास पंडित के गौर निताय हैं, लास्ट ईयर हम गए थे वहाँ, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने लिखी हुई भगवद्गीता है कुछ अंश लिखा हुआ है तो हैंड रिटन है महाप्रभु का, वहाँ देख सकते हैं अंबिका कालना में स्थान है। महाप्रभु ने कुछ नहीं लेकिन अपनी शिक्षा दी है उन्होंने और अपने अनुयायियों को प्रेरित किया है कि आप ग्रंथों की रचना को करो, और अलग अलग भक्तों से अलग अलग सब्जेक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कराए, बल्कि सारे जो शिक्षा है वो शिक्षाष्टकम पर आधारित है। ना एक्चुअली उसका लाभ है लेकिन पूर्ण लाभ नहीं है, हम तीव्रता से लाभ चाहते हैं तो हमें कॉन्शियस होकर करनी होगी एक्टिविटीज, इसलिए कहते हैं तीव्र न भक्ति योगे न, तीव्रता से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए यजतः पुरुष परम, तो अनकॉन्शियसली उनको सुकृति मिलेगी हमें धीरे धीरे धीरे, लेकिन हम चाहते हैं इसी लाइफ टाइम में तो हमें सीरियस होकर भक्ति करनी चाहिए, तो वैसे चलेगा फिर उसे बैकग्राउंड भक्ति कहते हैं कि नहीं, लास्ट टाइम में कहते बैकग्राउंड भक्ति, ठीक है हो रहा है भक्ति हो रही आ रहे मंदिर जा रहे हैं प्रसाद ले रहे हैं तो वो चलता रहेगा, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो नहीं मिलेगा हमें, तो अनकॉन्शियसली तो लाभ मिलता है थोड़ा सा, लेकिन पूर्ण लाभ चाहिए तो उसके लिए सावधान होकर करना चाहिए, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, क्या लिखा है बंदो मुए सावधान हो। गुरु पूजा में क्यों बोल रहे सावधान रहो? हम अनकॉन्शियस हो जाते गुरु पूजा में, कई बार आरतीज में होते टेम्पल में डेटीज को देखते फिर भी नहीं देखते। हाँ पश्चन अपी न पश्यति, तो गुरु पूजा में इसलिए वो जो शब्द नरोत्तम दास ठाकुर ने डाला है प्रेम भक्ति चंद्रिका से है। हाँ प्रेम भक्ति चंद्रिका से पहला ही सॉन्ग है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। वंदो मुई सावधान मते, तो मतलब गुरु की वंदना या भगवान की वंदना या जो भी आध्यात्मिक कार्य है वो हर एक व्यक्ति को बड़ा सावधान होकर करना चाहिए पूर्ण लाभ के लिए। हाँ क्या श्रीपादिक उपाधि है एक्चुअली, इसके लिए और कई चीजें बोली जा सकती है। आचार्य कहते श्री का मतलब, हाँ जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रखा है श्रीपाद। हाँ हमारे गौड़ी आचार्य श्री शब्द का तो कई अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। तो बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है वो श्रीपाद है। हाँ जैसे आज हमारे श्रीपाद महाराज, उनका तिरोभाव तिथि है। हाँ स्वरूप दामोदर महाराज का आपने अनाउंस नहीं किया होगा। अच्छा तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनका नाम था भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, तो जिनको श्रीपाद महाराज भी कहते हैं, तो उनका आज के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था कलकत्ता में और उनकी समाधि यहाँ है राधा कुंड में है। तो आज काफ़ी वैष्णव इस्कॉन के इकट्ठा हो रहे हैं राधा कुंड में और हमारे महाराज भी कल सुबह जा रहे हैं वहाँ, 3 दिन का प्रोग्राम है। तो श्रीपाद महाराज के श्रीपाद शब्द से याद आए, तो उन्होंने भी काफ़ी श्रील प्रभुपाद के लिए सेवा की थी। अलग अलग वैष्णवास देते हैं। प्रभुपाद ने तो अपना प्रणाम मंत्र स्वयं ही बनाया था क्योंकि कोई है ही नहीं था क्वालिफाइड जो, हाँ उस आचार्य की एक्टिविटीज़ को उस वैष्णव की एक्टिविटीज़ को देखकर दूसरे वैष्णव बनाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र लोकनाथ महाराज ने बनाया है, लोकनाथ महाराज और एक महाराज, तो इस प्रकार से प्रभुपाद का स्वयं ही बनाया था उन्होंने। हाँ तो दूसरे जो वैष्णवाज है उनकी एक्टिविटीज़ को देख कर वो प्रणाम मंत्र बनाते हैं कि क्या है उनकी प्रमुख। जैसे हमारे महाराज प्रभुपादश साहित्य ये प्रकाश वितीर्यश, 1 लाख गीता फिर 2 लाख गीता डिस्ट्रीब्यूशन प्रकाश महाराज, जितनी हिंदी बुक्स हम प्रभुपाद की पढ़ते हैं वो गुरु महाराज ने पब्लिश की है 80s में 90s में 80s 85 उस समय 81 प्रभुपाद के समय। प्रभुपाद जब भी महाराज मिलते थे प्रभुपाद से तो प्रभुपाद हमेशा पूछते थे कि वेर इज अ न्यू बुक, तो महाराज डर जाते थे। मतलब जब तक वो नया किताब नहीं छापते थे तब तक प्रभुपाद के पास नहीं जानते थे, तो इस प्रकार से उनका मूड था। प्रभुपाद ने आज्ञा दी थी कि सारे इंडियन लैंग्वेजेस में करो बुक्स को, तो उन्होंने हिंदी में हिंदी और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में प्रकाशित किया था प्रभुपाद की बुक्स को। तो दूसरे वैष्णवाज देते हैं जो प्रणाम मन उनकी ग्लोरीज को लिखते हैं, किस प्रकार से है ठीक। श्रीपाद मध्वाचार्य के श्रील प्रभुपाद के श्री पंच तत्व के श्री राधा गोविंद देव के श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के गौर भक्त वृंद के निताई गौर प्रेमानंदे।